समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
यारो नीलाम करो सुस्ती, हमसे उधार ले लो मस्ती, अरे हस्ती का नाम तंदुरुस्ती। अरे यारो नीलाम करो सुस्ती, हमसे उधार ले लो मस्ती, अरे हस्ती का नाम तंदुरुस्ती। यारो नीलाम करो सुस्ती,
कोई गीत तुम भी साथ गा दो ना, दीप एक राह पर जला दो ना। नदी गीत गाए झरना गुनगुनाए, कोई गीत तुम भी साथ गा दो ना।
दोस्तों, वसंत ऋतु की इस गाती गुनगुनाती प्यारी सी सुबह लेकर हाजिर हैं हम आप की प्रिय समाचार पत्रिका आज सवेरे का ये अंक। हार्दिक स्वागत अभिनंदन दोस्तों आपका। हम देंगे आपको देश और दुनिया के ताजा समाचार, फिर महानगरों का जानेंगे हाल, बात करेंगे मौसम के मिजाज की, और इतिहास में दर्ज कुछ ऐसी घटनाओं का भी होगा जिक्र जिनका है रिश्ता आज की तारीख से, और याद करेंगे हम ऐसी कुछ जानी मानी हस्तियों को जिनका संबंध है आज की तारीख से। और आज के संक में मैं हूं मुनीश शर्मा, और मेरे साथ हैं आपकी जानी पहचानी हरदिल अजीज सुभद्रा रामचंद्रन। नमस्कार सुभद्रा।
नमस्कार मुनीश, हैप्पी सॉन्ग टू स्टार्ट द प्रोग्राम विद। यस एंड हेलो देयर फ्रेंड्स, यू आर हैव ट्यून्ड इन टू आकाशवाणी नेटवर्क। अ वेरी हैप्पी पॉजिटिव ट्यूसडे टू ऑल ऑफ यू, एंड यस वी आर रेडी विद अनदर इंटरेस्टिंग एडिशन ऑफ आज सवेरे। स्टे विद अस एंड एंजॉय। सो स्टार्ट विद सम न्यूज़ हेडलाइंस मुनीश।
जी हाँ बिल्कुल, सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल चुनाव में विजय के लिए राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रवि लामिछाने और आरएसपी के वरिष्ठ नेता बालिंद्र शाह को बधाई दी है। टेलीफोन पर हुई बातचीत में प्रधानमंत्री ने आगामी नई सरकार के लिए अपनी शुभकामनाएं दी हैं, और दोनों ही देशों की आपसी समृद्धि, प्रगति और कल्याण के लिए साथ मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता को भी दोहराया है। उन्होंने विश्वास जताया है कि संयुक्त प्रयासों से भारत और नेपाल के रिश्ते आने वाले वर्षों में नई नई ऊंचाइयों को छुएंगे।
The Indian Embassy in Qatar informed that around 1,000 Indians stranded in Doha on transit or short-term visits have departed on Qatar Airways flights over the last 3 days. It added that Qatar Airways have operated a Doha-New Delhi flight yesterday in which more than 300 Indian passengers stranded in Doha traveled to India. The embassy further informed that Qatar Airways is planning 3 flights to Delhi, Mumbai and Kochi for today. It has also advised the Indian community to strictly comply with guidelines of Qatar's Minister of Interior for their safety and security. It also urged people not to fall for rumours, advised to follow authentic sources of information only.
सरकार ने तेल रिफाइनरियों को एलपीजी का उत्पादन बढ़ाने और अतिरिक्त उत्पादन को घरेलू इस्तेमाल के लिए उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। ये कदम ईंधन आपूर्ति में मौजूदा भू राजनैतिक तनाव और एलपीजी आपूर्ति पर लगी पाबंदियों के मद्देनजर उठाया गया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं के लिए एलपीजी की आपूर्ति को प्राथमिकता दी है, और साथ ही जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकने के लिए सिलेंडर की 2 बुकिंग्स के बीच का अंतर बढ़ाकर 25 दिन कर दिया है।
Government has provided 10 crore 51 lakh LPG connections to women from poor households so far under Pradhan Mantri Ujjwala Yojana. The scheme was launched in May 2016 with an objective to provide deposit-free LPG connection to women across the country. Minister of State for Petroleum and Natural Gas Suresh Gopi said this in a written reply to a question in the Rajya Sabha yesterday. He said the scheme had resulted in a shift from traditional cooking methods that involve burning solid fuels like wood, dung and crop residues. The minister said government is providing a targeted subsidy of 300 rupees per cylinder for up to 9 refills of 14.2 kg cylinders per annum for 2025-26.
ग्रामीण विकास मंत्रालय ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 का प्रतीक चिन्ह डिजाइन करने के लिए माई गव पोर्टल पर एक प्रतियोगिता का आयोजन किया है। इच्छुक प्रतिभागियों को माईगव पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा और प्रविष्टियां ऑनलाइन जमा करनी होंगी। इस प्रतियोगिता में भाग लेने की अंतिम तारीख है 20 मार्च। चयनित प्रतीक चिन्ह के विजेताओं को 50,000 रुपए का नकद पुरस्कार दिया जाएगा।
Amid heightened volatility in the financial markets due to the ongoing West Asia conflict, SEBI Chairman Tuhin Kanta Pandey has urged investors to remain calm. Addressing an event to celebrate 30 years of Nifty 15 Mumbai last evening, Mr. Pandey said India's domestic fundamentals have continued to remain strong and provide resilience amid such uncertainties. Mr. Pandey said Nifty has navigated several such phases but over the long run continue to reflect the strength and resilience of India's growth story.
कल नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय मलेरिया सम्मेलन 2026 का समापन हो गया। 3 दिवसीय सम्मेलन में देश और दुनिया भर के वैज्ञानिक, जन स्वास्थ्य विशेषज्ञ, नीति निर्माता और शोधकर्ता भी शामिल रहे और मलेरिया के उन्मूलन के लिए नई तकनीकों और रणनीतियों पर चर्चा हुई।
All India Institute of Medical Sciences has said that an artificial intelligence-based algorithm has been developed to detect glaucoma. At Dr. R.P. Center for Ophthalmic Science in collaboration with the Ministry of Health and Family Welfare. Addressing the 59th Foundation Day of Dr. R.P. Center for Ophthalmic Science at AIIMS, New Delhi, Professor Dr. Tarun Dada said an AI system has been developed through which glaucoma can be detected with just a photograph of the patient's eye.
और FIH महिला हॉकी विश्व कप 2026 क्वालिफायर में भारत और स्कॉटलैंड के बीच मुकाबला रहा 2-2 से ड्रॉ। भारतीय टीम पहले हाफ तक 2-1 से आगे थी लेकिन स्कॉटलैंड ने तीसरे क्वार्टर में शानदार वापसी करते हुए स्कोर कर दिया बराबर। और दोस्तों अब करते हैं रुख महानगरों का और जानते हैं क्या कुछ है खास वहां आज। पहले बात दिल्ली की। पश्चिम एशिया में मौजूद स्थिति को देखते हुए दिल्ली हवाई अड्डे ने एक यात्रा परामर्श जारी किया है। इसमें कहा गया है कि पश्चिम की ओर जाने वाली अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में देरी या समय सारणी में बदलाव हो सकता है। दिल्ली हवाई अड्डे ने यात्रियों को हवाई अड्डे पर जाने से पहले संबंधित एयरलाइन से ताजा जानकारी हासिल करने की सलाह दी है। हवाई अड्डे ने यह भी स्पष्ट किया है कि अन्य सभी उड़ानें निर्धारित समय पर चल रही हैं। और नई दिल्ली के भारत मंडपम में आज से आहार मेला 2026 का आरंभ हो रहा है। 14 मार्च तक चलने वाले इस अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और हॉस्पिटैलिटी मेले में भारत समेत 17 देशों की कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। आयोजकों ने बताया है कि इस बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित तकनीक और स्मार्ट उपकरण भी यहां प्रदर्शित किए जा रहे हैं जो खाद्य कारोबार को और ज्यादा आसान बनाएंगे और लाभदायक बनाने में भी सहायक होंगे। दोस्तों मेले में प्रवेश के लिए एक दिन का टिकट है 500 रुपए और पूरे सीजन का टिकट आप हासिल कर सकते हैं 1,700 रुपए में।
Moving to Chennai now, a new private cancer care center has been opened on Old Mahabalipuram Road in Chennai. The center offers advanced oncology services such as high precision radiotherapy, immunotherapy, complex cancer surgeries, and an AI-powered PET CT scan facility for early cancer detection and several other services under one roof. We have another news from Chennai. Aringer Anna Zoological Park in Chennai has received new animals, including a pair of Himalayan black bears and a pair of leopard cats from Jammu Zoological Park as part of an inter-zoo animal exchange program to improve genetic diversity and support conservation breeding. The animals are currently under a mandatory 21-day quarantine. After quarantine, they will slowly adapt to Chennai's climate before being introduced to the zoo.
और अब बात मुंबई की, जहां बढ़ते यातायात जाम और प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने तत्काल प्रभाव से नए ऑटो रिक्शा परमिट जारी करने पर लगा दी है रोक। राज्य परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक ने कहा है कि यह निलंबन तब तक जारी रहेगा जब तक राज्य मंत्रिमंडल परमिट जारी करने के लिए नए मानदंड तय नहीं कर लेता। सरकार उन शिकायतों की भी जांच करेगी जिनमें एक ही परिवार के सदस्यों को कई परमिट जारी किए जाने और कुछ परमिटों के बांग्लादेशी नागरिकों को दिए जाने का आरोप लगा है। राज्य सरकार नागरिकों को बेहतर परिवहन की सुविधाएं प्रदान करने के लिए जल्द ही एक नई नीति बनाने की भी योजना बना रही है दोस्तों। और महाराष्ट्र सरकार ने राज्य विधानसभा को यह सूचित किया है कि बृहन्मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट बेस्ट और उसके ठेकेदारों के लिए काम करने वाले 58 ड्राइवर्स को 2022 से 24 के बीच सड़क दुर्घटनाओं के चलते बर्खास्त किया गया। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि इसी तरह की वजहों से 603 ड्राइवर्स को निलंबित भी किया गया। दुर्घटनाओं को कम करने के लिए बेस्ट ने इलेक्ट्रिक बसों के चालकों के लिए लंबे उन्नत प्रशिक्षण कार्यक्रमों सहित कई तरह के उपाय शुरू कर दिए हैं।
Moving to news from Bengaluru now. The government of Karnataka has signed an agreement with Krishi Kalpa Foundation to establish a center of excellence in agriculture and allied innovation in Kalaburgi under the Rs. 1000 crore LEAP LEE program. The center will serve as a rural innovation hub supporting agri-tech startups, research, skill development and technology adoption in areas such as AI, IoT, robotics and digital architecture. The project will be implemented by Krishi Kalpa Foundation with support from Karnataka Innovation and Technology Society to help startups, farmer producer organizations, self-help groups and rural innovators in the Kalyan Karnataka region. Over to you, Manish, now.
जी हाँ सुभद्रा, बात करते हैं कोलकाता की, जहाँ भारत निर्वाचन आयोग आगामी चुनावों की तैयारियों की समीक्षा के लिए कोलकाता में आज एक बैठक करेगा। आयोग राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राज्य पुलिस के नोडल अधिकारी और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के अधिकारियों से मुलाकात कर चुनाव की तैयारियों पर चर्चा करेगा। बाद में आयोग पश्चिम बंगाल सरकार के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से भी मुलाकात करेगा। इस दौरे में बूथ स्तरीय अधिकारियों के साथ बातचीत और उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी शामिल होगी। पूर्ण दल 3 दिवसीय दौरे पर कोलकाता में है। दल 8 मार्च को पहुंचा था और आज शाम को रवाना हो जाएगा।
And getting to Hyderabad now, Telangana Chief Minister Revanth Reddy has called for a comprehensive upgrade of the state's police department to tackle the growing menace of cybercrime and narcotic drugs. He was speaking at the Telangana Police Retreat 2026 held in Hyderabad yesterday. Addressing senior police officials, the Chief Minister said the department faces two key challenges, technical challenges, which can be resolved by providing resources and technology, and adaptive challenges, which require deeper understanding and strategic planning. Mr. Reddy announced that the government will constitute a high-level committee headed by Chief Secretary K. Ramakrishna Rao to examine proposals submitted by police officials on issues including cybercrime, narcotics and recruitment, and to recommend actionable solutions. The Chief Minister also announced that a police retreat will be organized every year in the month of December. And what is left now?
जी हाँ सुभद्रा, अब रुख करते हैं हम महानगरों का, जहां मौसम की हम देंगे जानकारी। चूंकि दोस्तों हमारी ये कोशिश रहती है कि न सिर्फ देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों से आप अवगत रहें, बल्कि अगर आप यात्रा का आज मूड रखते हैं, आपका कोई कार्यक्रम है जाने का महानगरों में, तो आपके वहां के मौसम के मिजाज से भी आप रहें परिचित। बात राजधानी की, दिल्ली में कहीं कहीं आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। वहीं आज का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम रह सकता है 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास।
And Chennai is expected to have partly cloudy sky. The minimum temperature was 24 degrees Celsius. Maximum will be around 32 degrees. And Bengaluru is expected to have mainly clear sky. The minimum temperature was 20 degrees Celsius. The maximum will be around 33 degrees. And Hyderabad is expected to have mist. Temperature will hover between a minimum of 22 and a maximum of 35 degrees Celsius. And rest of the places?
Yeah, Mumbai mein aaj ऐसी संभावना है कि गर्म हवाएं भी वहां चल सकती हैं। न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम रह सकता है 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास। सुभद्रा, अब किस महानगर की ओर रुख करते हैं?
That's it. I have done my bit and you have to.
जी तो चलिए कोलकाता फिर आप जान लीजिए कि कोलकाता में छाए रह सकते हैं आज हल्के हल्के बादल और कहीं कहीं रिमझिम का भी है अनुमान। तो कोलकाता की तरफ आप निकल रहे हैं तो रखिए अपना छाता साथ में। अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम जा सकता है दोस्तों 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास। आज है 10 मार्च और 10 मार्च किन वजहों से है एक खास दिन, इतिहास की कौन सी खास घटना इससे जुड़ी हुई है, अब बात उन बातों की। और यही है वो दरअसल तारीख 1876 में जब ग्राम बेल ने पहली बार टेलीफोन पर अपने एक दोस्त से बात की और अपने दोस्त से उन्होंने कहा था, मेरी आवाज सुनो, मैं अलेक्जेंडर ग्राहम बेल।
And he also said, Mr. Watson, come here, I want to see you.
Gee.
It was fun. Great fun, no? Yes, and going back in time, this happened in 1876. And in 1535, Spanish Bishop Thomas de Berlenga accidentally discovered the Galapagos Islands while sailing to Peru.
और 1922 में दोस्तों यही थी वो तारीख यानी 10 मार्च जब महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया राजद्रोह के आरोप में 6 वर्षों की कैद सुनाई गई लेकिन 2 वर्ष बाद हो गए थे तब वो रिहा।
एंड गोइंग बैक अ लिटिल बिट इन टाइम 1910 द किंग डायनेस्टी ऑफ चाइना इश्यूड एन इंपीरियल रीस्क्रिप्ट दैट ऑफिशियली अबॉलिश्ड स्लेवरी थ्रू आउट द एम्पायर एंड 1924 द यूएस सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड a New York state law forbidding late night work for women. And also 1937 this day, this is music news, Benny Goodman brings his swinging jazz sound to the Paramount Theater, New York City, where adoring fans dance in the aisles. A newspaper report says that kids were jitterbugging to the music the first time this phrase is used to describe the new dance style.
और दोस्तों 2003 में यही थी वो तारीख यानी 10 मार्च जब उत्तर कोरिया ने किया क्रूज मिसाइल का परीक्षण और 2007 में यूक्रेन के वैसिली इवानचुक को हराकर विश्वनाथन आनंद शतरंज की दुनिया में पहुंच गए थे पहले स्थान पर और 2010 में भारतीय संसद की ऊपरी सदन राज्यसभा में महिला आरक्षण विधेयक हो गया था पारित।
And 1959, the Tibetan uprising began in Lhasa. Thousands of Tibetans surrounded the Potala Palace to protect the Dalai Lama from Chinese forces. 1969, the Central Industrial Security Force, CISF, was officially created to protect major industrial units and critical infrastructure in India. The day celebrated annually as CISF Raising Day in India by the Central Industrial Security Force. And also some events. Astronomers in 1977 discovered the rings of Uranus using the Kuiper Airborne Observatory while the planet occulted a distant star. And also in 1982, in a rare event called Syzygy, during which all 9 planets, including Pluto, were positioned on the same side of the sun.
और दोस्तों अब हम याद करते हैं उन कुछ जानी-मानी हस्तियों को है जिनकी आज पुण्यतिथि, जयंती या फिर जन्मदिन। दोस्तों आज पुण्यतिथि है सावित्री बाई फुले की जिन्हें हम अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। सावित्री बाई फुले भारत के पहले बालिका विद्यालय की पहली प्रधानाचार्य और पहले किसान स्कूल की संस्थापिका भी थीं। महात्मा ज्योतिबा को महाराष्ट्र और भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन में एक सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में माना जाता है। उनको महिलाओं और दलित जातियों को शिक्षित करने के प्रयासों के लिए भी जाना जाता है। ज्योतिराव जो बाद में ज्योतिबा के नाम से जाने गए सावित्रीबाई के संरक्षक गुरु और समर्थक थे। सावित्रीबाई ने अपने जीवन को एक मिशन की तरह से जिया जिसका मकसद था विधवा विवाह कराना, छुआछूत मिटाना, महिलाओं की मुक्ति और दलित महिलाओं को शिक्षित बनाना। वे एक कवित्री भी थीं, उन्हें मराठी की आदि कवित्री भी कहा जाता है।
One of the greatest bass guitarists and songwriters of all time, Jeff Ament of Pearl Jam celebrates his birthday today. Expanding upon the role of a traditional rock bass player with his use of fretless bass, upright bass and 12-string bass, Ament has set himself apart in terms of his innovative playing style and his songwriting contributions. A beautiful track here goes, Given to Fly.
दोस्तों आज हम याद कर रहे हैं गबर सिंह नेगी को, भारतीय सैनिक, प्रथम विश्व युद्ध में मरणोपरांत विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त करने वाले गढ़वाल उत्तराखंड के वीर सपूत। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गबर सिंह नेगी 39वीं गढ़वाल राइफल्स की दूसरी बटालियन में राइफलमैन थे। 10 मार्च 1915 को फ्रांस में न्यूए चैपल नामक स्थान पर जर्मन सेना के विरुद्ध लड़ते हुए युद्ध के मोर्चे पर असीम साहस, वीरता और कर्तव्य परायणता के लिए गबर सिंह नेगी को ब्रिटिश सरकार ने सर्वोच्च सैन्य पदक विक्टोरिया क्रॉस से मरणोपरांत सम्मानित किया गया था। दोस्तों, बहुत कम लोग ये जानते हैं, चूंकि इस भूमिका को बहुत अधिक प्रचारित प्रसारित नहीं किया गया, कि जो दो बहुत बड़ी लड़ाइयां प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध लड़े गए उसमें भारतीय सैनिकों का भी बहुत बड़ा योगदान था। और आज हम उनको याद करते हैं, उन सैनिकों को, तो याद आ रहा है हमें वो गीत जो प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर बनी एक फिल्म में रखा गया था, और वो फिल्म थी उसने कहा था।
चलते हैं तारे
And friends, today is also the birth anniversary of Udupi Ramachandra Rao.
जी हाँ, जयंती है आज उडुपी रामचंद्र राव की, भारत के अंतरिक्ष वैज्ञानिक और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष। वे भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला की शासी परिषद के अध्यक्ष पद पर भी कार्यरत रहे। प्रोफेसर यू आर राव अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त एक अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे, जिन्होंने भारत में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के विकास और संचार और प्राकृतिक संसाधनों के सुदूर संवेदन में व्यापक उपयोग की दिशा में अपना मौलिक योगदान किया। उनको भारत सरकार ने 1976 में विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के क्षेत्र में पद्म भूषण से नवाजा और वर्ष 2017 में पद्म विभूषण से भी उन्हें सम्मानित किया गया। और दोस्तों, आज जयंती है लल्लन प्रसाद व्यास की। लल्लन प्रसाद व्यास भारत के जाने माने समाज सुधारक। 1984 में वे नैमिषारण्य के स्वामी नारदानंद जी के संपर्क में आए और आध्यात्मिक प्रकाशन जगत की एक प्रमुख हस्ती बन गए। अपने विश्व रामायण सम्मेलनों के माध्यम से श्री राम का कार्य विश्व पटल पर समूचे जगत तक पहुंचाया। व्यास जी गायत्री शक्तिपीठ के माध्यम से प्रथम अंतर्राष्ट्रीय रामायण सम्मेलन जो हुआ था 27 दिसंबर 1984 को अयोध्या में वाल्मीकि भवन में, उसका आयोजन आप ही ने कराया था और उसकी अध्यक्षता उस समय की थी पंडित राम किंकर उपाध्याय ने, जो एक बड़े ही प्रसिद्ध वक्ता थे।
एंड फ्रेंड्स, टुडे पॉप रॉक बैंड बॉस्टन्स फाउंडर मेंबर टॉम शोल सेलिब्रेट्स हिज बर्थडे। This main songwriter, primary guitar player, keyboard player is the only remaining original member of the rock band Boston who has appeared on every Boston release. Classically trained on piano as a child, Tom always had a connection with the music from the classical masters that filled his home when he was a young boy. One tune we are going to play now, it's called More Than a Feeling.
I close my eyes.
Well, Subhadra, thank you so much for sharing this mellifluous,
yeah, of course, this
lovely,
is,
melodious voice.
Yes, yeah, this is Boston, the band. They formed in Boston, so they call themselves Boston also. And we have another birthday. This is a modern country music singer, Carrie Underwood. She celebrates her birthday today. Of course, this young Oklahoma-born girl earned a recording contract as her winning prize for American Idol contest, which she won in 2005. A string of successful albums followed alongside Grammys and Country Music Association awards. Birthday wishes also to Hollywood actress Sharon Stone, known for her roles in Basic Instinct, Casino War and Remembrance. Sharing the day with her is another actress, Chuck Norris. And we have another folk singer, songwriter, guitarist from Texas, Eddie Brickle. She celebrates her birthday today. She fronted the alternative jam rock band Eddie Brickle and the Bohemian Group. After two successful albums, the group disbanded. Eddie went solo, also married the great Paul Simon. Her first single is What I Am, is playing in the background.
You just mentioned the name of Chuck Norris, and I'm reminded of his breathtaking performance in The Way of the Dragon with Bruce Lee.
Yes, of course. Yes.
Thanks for reminding me.
Yeah, that's his birthday today. Yes.
जी आज जन्मदिन है पद्मा खन्ना जी का भी, जो एक प्रसिद्ध भारतीय बॉलीवुड अभिनेत्री और निर्देशक हैं. मुख्य रूप से 1970 और 80 के दशक की हिंदी और भोजपुरी फिल्मों में अपने काम के लिए जानी जाती हैं. रामानंद सागर का जो सीरियल आया था रामायण, उसमें उन्होंने केकई की एक बड़ी बहुत ही यादगार भूमिका जो है वो निभाई. और फिर एक फिल्म थी सौदागर, जिसमें अमिताभ बच्चन के साथ उनकी भूमिका को आज भी याद किया जाता है. तो सुनते हैं उसी फिल्म से ये एक बड़ा ही प्यारा सा गीत.
सजना है मुझे सजना के लिए, जरा उलझी लटे सवार दो, हर अंग का रंग निखार दो, के सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए. पानी पड़े तन पे तो शोला निकले, जाने कैसी आग में बदन जले.
और दोस्तों, इजाजत दीजिए कार्यक्रम आज सवेरे को यहीं समाप्त करने की. आज्ञा दीजिए मुझे यानी मुनीश शर्मा और मेरी सहयोगी सुभद्रा रामचंद्रन को. अगर आप हमें दोबारा सुनना चाहते हैं, लॉग इन कीजिए हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in.
Stay tuned for coming up now with Samata Prabhat and Hindi News Bulletin, followed by Morning News in English at day 15. Thanks for tuning in, friends. Have a great day. Namaskar.
Namaskar.